नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप सुन रहे हैं डेली बिजनेस कास्ट। आइए सुनते हैं व्यापार से जुड़े आज के प्रमुख समाचार। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि ईंधन के दाम में कमी लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को मिलकर कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि केंद्र और राज्यों दोनों पर ही राजस्व का दबाव है, जो पूरी तरह से समझ में आता है, लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि इसका महंगाई पर भी असर पड़ता है, इसलिए टैक्स में उचित स्तर पर कमी लाना बेहद जरूरी है। मूडीज ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर 13.7% कर दिया है। इससे पहले उसने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 10.8% रहने का अनुमान दिया था। इसके अलावा उसने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की इकोनॉमी में 10.6% की बजाय 7% की ही गिरावट आएगी। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में गुरुवार को 25 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा हो गया। इसमें सब्सिडी वाला सिलेंडर, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलने वाला सिलेंडर भी शामिल है। फरवरी में अब तक LPG के दाम 3 बार बढ़ाए जा चुके हैं। दरअसल मांग में सुधार होने के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में LPG के दाम बढ़े हैं, जिसके चलते यह बढ़ोतरी हुई है। और अब हाल शेयर मार्केट का। शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन तेजी के साथ बंद हुए। गुरुवार को सेंसेक्स 258 अंकों की बढ़त के साथ 51,039 अंक पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 115 अंक के लाभ से 15,097 पर बंद हुआ। वहीं फरवरी की फ्यूचर एंड ऑप्शन सीरीज के लिए निफ्टी ने 10.7% का गेन दर्ज किया है, जबकि निफ्टी बैंक ने 20% का रिटर्न दिया है। सेक्टोरल इंडाइसेस में निफ्टी मेटल ने आज 4% के लाभ के साथ सबसे ज्यादा बढ़त देखी गई। इंडेक्स अपने 3 साल के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी FMCG को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर हरे निशान में बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी मिड कैप ने 1.5% और निफ्टी स्मॉल कैप ने 1.4% के गेन के साथ बेंचमार्क इंडेक्स को आज आउट परफॉर्म किया। आज इंडिया विक्स भी करीब 5% की गिरावट के बाद 23 अंक पर बंद हुआ। शेयर बाजार में दिखी हलचल के पीछे क्या रही वजहें, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं KDF इनकॉर्प के फाउंडर नितिन केडिया जी की तरफ। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, रिजर्व बैंक लगातार इस बात पर जोर देता आ रहा है कि बोरोइंग कॉस्ट को लो रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस आश्वासन के बाद भी बॉन्ड निवेशक जो वो यील्ड को ऊपर बढ़ाए जा रहे हैं, निवेशक RBI के इस आश्वासन से संतुष्ट क्यों नहीं नजर आ रहे हैं?
देखिए, हम लोग पहले भी इस चीज को कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि दुनिया भर के जो बॉन्ड निवेशक है वो सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि वो सभी इस बात को लेकर 100% आशान्वित है कि गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग कैलेंडर का प्रोग्राम अपना प्रेजेंट किया, बोरोइंग जो है वो उससे कहीं ज्यादा जाएगी और गवर्नमेंट जो है वो बोरोइंग बहुत अच्छी करने वाली है। और इसी का कारण है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब आपको 1.4 का जैसे US में आपको बॉन्ड के अंदर रिटर्न मिल रहा है या दूसरी जगह मिल रहा है, तो धीरे धीरे ये शिफ्ट ऑफ सेक्टर जो है वो शुरू हो चुका है। और अगर इन्फ्लेशन के आंकड़े, बिकॉज अक्रॉस द वर्ल्ड क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए, अगर ये इसी तरह से जारी रहता है तो आने वाले समय में भारत जैसे देश के लिए थोड़ी सी मुश्किल परिस्थितियां हो सकती हैं।
जी, उपासना जी, सर, बढ़ते फ्यूल प्राइसेस से भी ये तो जायज है कि क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं जिससे फ्यूल के प्राइसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रेडर्स से लेकर RBI तक ये कह चुके हैं कि सरकार को टैक्स के मोर्चे पर कोई समाधान निकालना चाहिए, वरना इन्फ्लेशन को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। और जैसे कि आपने बात की, फिर ग्रोथ जो हमारा प्रोस्पेक्टिव है ग्रोथ को लेकर के, उस पर भी असर पड़ सकता है। क्या लगता है सर, इस मुकाम पर सरकार के पास टैक्स कम करने का कोई विकल्प है?
बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट जो कंसोलिडेशन और GST स्ट्रक्चर की बात कर रही है, पर नीचे वाले जो GST स्लैब में उनमें ज्यादा कलेक्शन है, ऊपर में कम है, तो गवर्नमेंट का ओवरऑल टैक्स कलेक्शन बढ़ाने को लेकर ही ध्यान रह सकता है। और 2.5% जब आप फिस्कल डेफिसिट बजट की बात करते हैं तो वैसे भी गवर्नमेंट के पास जो टैक्स कम करने के दायरे वो बहुत कम है।
सर, पिछले कुछ समय से हमने गोल्ड पर दबाव बनते देखा है, क्या इसमें भी हम बॉन्ड यील्ड का हाथ देख सकते हैं और ये किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है गोल्ड की कीमतों को?
देखिए, गोल्ड में जो भी करेक्शन आ रहा है वो टेक्निकल करेक्शन है। गोल्ड ने जैसे ही अपने 200 दिन का मूविंग एवरेज 1780 से तोड़ा था, तो 1770 के लेवल तक उसने 1765 तक दिया था। ओवरऑल जब तक गोल्ड 1820 डॉलर से 200 दिन का मूविंग एवरेज साइकोलॉजिकल है, उसको ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम लोग इसको एक रेंज में 1760 और 1820 की रेंज में देखेंगे।
सर, निजी सेक्टर के बैंकों को भी अब सरकार के कारोबार उसकी स्कीम्स को आगे बढ़ाने के लिए पार्टिसिपेट करने की मंजूरी मिल गई है सरकार की तरफ से। इस फैसले से निजी बैंकों के लिए आगे कैसा आउटलुक बन रहा है, इनके लिए स्कोप और कितना बढ़ गया है?
एस्टिमेट जो हम आज पढ़ रहे हैं तो उसमें 7-8% कोटक की अर्निंग में इजाफा देख सकते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे जो छोटे बैंक यस बैंक है या इस तरह के जो अन्य बैंक है उनको फायदा मिलेगा। देखिए परसेंटेज कम था लेकिन जैसे आईसीआईसीआई बैंक का कोटक की बात करें तो उनका रेलवे के अंदर या डिफेंस के अंदर सहभागिता रहती थी, पर चूंकि अब ये खुल चुका है तो अब ये पूरा सेक्टर खुलेगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक जो है इनको कुछ दिन पहले बिल्कुल ये जता दिया गया था कि अब प्राइवेटाइजेशन की तरह उन्हें कदम से सरकारीकृत बैंकों को प्राइवेट करने की बात चल रही है। तो आई थिंक ये एक इंसेंटिव दिखाया गया ताकि उनको एक अच्छा वैल्यूएशन मिल सके।
जी सर, एक रिपोर्ट आई है कि मुद्रा लोन के तहत एमएसएमई को जो लोन दिए गए हैं उनमें अनुमान से ज्यादा डिफॉल्ट की गुंजाइश दिख रही है। बैंकों का कहना है कि 25% तक लोन एनपीए हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बैंकिंग सेक्टर क्या इतनी रकम के एनपीए को झेलने में सक्षम दिखाई दे रहा है? कितना असर पड़ सकता है इस पूरे सिस्टम पर?
मुद्रा लोन है वो बैक बाय सिडबी है और उसमें 15% एनपीए जो है वो सरकार के खाते में जाता है और 50% की गारंटी सरकार ने खुद ले रखी है। तो जहां तक बैंकों की बात करते हैं तो हम मुझे पर्टिकुलरली बैंकों की बैलेंस शीट के ऊपर मुद्रा लोन का कोई इम्पैक्ट आते हुए नहीं दिखाई दे रहा।
जी सर,
हाँ गवर्नमेंट के लेवल पे या सिटी के लेवल पे उसको इम्पैक्ट कर सकता है और मुद्रा लोन का इम्पैक्ट बैंकों को मिले ये थोड़ा सा मुश्किल है।
सर शायद आपने कहा कि सिडबी के मोर्चे पर उस पर असर पड़ सकता है, गवर्नमेंट पर असर पड़ सकता है, क्या ये इतना बड़ा अमाउंट हो सकता है कि सरकार को इसके लिए जो प्रोविजनिंग करनी पड़े और वो बाकी चीजों के लिए जो उसने बचा के रखी है जिस पर वो खर्च कर सकती थी वहां से उसे खींच करके यहाँ पर प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है?
देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट को इस मुद्दे पे ध्यान देना पड़ेगा और ये पॉलिसी का मुद्दा है। इसमें गवर्नमेंट को कुछ एक्सपेंसेस अपने कट करने पड़ेंगे। हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा भाई जीडीपी का कितना परसेंटेज है। आई डोंट थिंक इट इज मोर देन 0.1% ऑफ 0.13% ऑफ द जीडीपी। जब तक ये 0.25% के ऊपर नहीं जाता है जीडीपी के तब तक ऐसा कोई बड़ा रिस्क नहीं दिखाई दे रहा है।
सर आज कोल इंडिया एक साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया, इसमें करीब 9% तक की जबरदस्त तेजी देखी गई है, इसके पीछे क्या कारण नजर आ रहा है सर?
देखिए आज कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें शॉर्ट कवर नहीं होता है और लोगों को आज उनमें बाय किया तो उनमें से एक कोल इंडिया भी था। और उसके अलावा भी अगर आप देखोगे जिस तरीके से एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो एक अल्टरनेट फ्यूल के आप कोई भी एनर्जी स्टॉक ले लें तो वर्ल्ड वाइड एक फिनोमिना चल रहा है जिसमें एनर्जी स्टॉक बाई किए जा रहे हैं। और फिर ये चाहिए पीएसयू स्टॉक तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कंटिन्यूस बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बीट द बिजनेस, उसमें क्या है जो अच्छे नवरत्न या अच्छी पीएसयू है वो हम आगे आने वाले टाइम में बढ़ते हुए देखेंगे।
जी सर, सर एनर्जी सेक्टर की बात की आपने, क्या कुछ 2-3 ऐसे पिक्स आप सुझाना चाहेंगे जिनमें निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है लंबे समय तक के लिए?
मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए, वेट करके ओएनजीसी जो है वो एक अच्छा स्टॉक है जिसमें लोग बने रह सकते हैं।
नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद सर। तो ये था आज का डेली बिजनेस कास्ट जिसे आप सुन रहे थे अपनी साथी उपासना वर्मा के साथ। सुनते रहिए नवभारत गोल्ड। धन्यवाद।